ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ
Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Radha Girdhari Radha Girdhari Radhe Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath. Jagannath Swami Nayana Padagami, Nayana Padagami Bhavati. Gaurangi Tai, Gaurangi Tai, Jaya Gaurangi Tai. Gaurangi Tai, Gaurangi Tai, Gaurangi Tai, Jaya Gaurangi
परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्कर्ष श्री श्रीमती श्रीवंग श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माई संध्यारती दर्शन की समवेद भक्त वृंद की और ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज और ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज और ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरिस्ट गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा जो कि बोर्ड पर लिखा है श्लोक। तो आप सभी लोग इस श्लोक को देखकर मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तो सभी लोग बोलिए,
धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवा च एव किं कुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया
कोई कहने के लिए कोई कहे किसी को द्वारा
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया।
माताय
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया।
इनका शब्दार्थ इस प्रकार है, धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेदा एकत्र जुजुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या पूर्वत किया संजय हे संजय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। होम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं साधवदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कलपत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमारा प्रथम दिवस है श्रीमद् भगवद गीता के। इस मुख्य जो श्लोक है उस मुख्य श्लोक से हम आगे के दिनों में हर शुक्रवार को चर्चा करेंगे। तो वैसे सारे श्लोक अपने आप में परिपूर्ण हैं श्रीमद् भगवद गीता के, लेकिन तत्पर भी इसके अंदर के कुछ ऐसे 108 श्लोक हैं जो हर प्रचारक लोगों को ये प्रचार करने में बहुत ही काम आता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के उन्हीं श्लोकों से हम हर शुक्रवार को बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इन श्लोकों के आधार पर हम भगवद गीता के जो ज्ञान जो छुपे हुए हैं उसको भी बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर इस श्लोक के आधार पर जहां पर धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे संजय से, वही पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में किए क्या। तो यहां पर धृतराष्ट्र के प्रथम प्रश्न से इस भगवद गीता के भूमिका की शुरुआत होती है। वास्तविक ये जो श्लोक जो है, इस श्लोक को आप इस बोर्ड पर देख सकते हो और उसी के अनुसार एक एक श्लोक एक एक शब्द को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे इसी श्लोक के, जो कि ये भगवद गीता के ये प्रथम श्लोक जहां पर धृतराष्ट्र का प्रश्न पूछा गया है संजय से। अब ये प्रश्न कहां पर पूछ रहे, ये प्रश्न पूछ रहे हस्तिनापुर पर, जहां पर धृतराष्ट्र संजय के साथ बैठे हैं। तो वो अपने चक्षु न रहने के कारण वो संजय को अपना चक्षु के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारते हुए वो कुरुक्षेत्र के स्थल की घटनाओं को सुनना चाहते थे। अब संजय कौन है? संजय वेद व्यास जी के प्रिय शिष्यों में एक है। संजय ने वेद व्यास जी की कृपा प्राप्त करके वो दूर दूर स्थान पर क्या क्या घटना चल रही है वो सारी घटनाओं को देख सकते हैं। ये संजय के पास शक्ति थी, जो कि दूसरे शब्द में कहा जाए दूरदर्शन। आज के तारीख में जो लोग अपने जो अपने अपने घर पर बैठकर जो दूरदर्शन देखते हैं, ये वास्तविकता ये यंत्र के आधार पर है। लेकिन संजय जो दूरदर्शन कर रहे हैं ये मंत्र के आधार पर है। संजय को वेद व्यास जी की कृपा से वो मंत्र के जप की शक्ति से वो दूर के दृश्य को देखने की शक्ति से थी। आज के तारीख में जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ता है ये वास्तविकता में पहले था, तो ये कोई अद्भुत बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कोई अगर टीवी का निर्माण कर लिया तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। केवल घर पर बैठकर व्यक्ति लंदन, यूएसए, फ्रांस वगैरह सब घूम सकते हैं, केवल रिमोट को घुमाकर दूर का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूरदर्शन है ये यंत्र के आधार पर है। जो भी कुछ आज के तारीख में दिख रहा है ये पहले के समय पर इसकी उपलब्धि थी। जैसे बताया जाता है जो आज के तारीख में जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है ये सब कहां से उत्पन्न हुआ है, ये सब प्रथम रावण को देखा देखी बनाया गया है। रावण के पास भी एरोप्लेन था जिसे कहते हैं पुष्पक विमान। तो रावण अपने मंत्र के आधार पर वो एरोप्लेन को उड़ाता था, हालांकि उसमें जो इस एरोप्लेन में जो आवश्यकता पड़ती है वो एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो केवल इच्छा करने मात्र से वो पुष्पक विमान उड़ान लगाता था। और वैसे उसी को देखा देखी आज के तारीख में यंत्र के आधार पर बनाया गया है। जो आज के तारीख में हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब दिख रहा है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या? ये कुछ और नहीं, इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जो कि अर्जुन के पास था, अश्वत्थामा के पास था। तो महाभारत में इसका वर्णन है। तो वही जो ब्रह्मास्त्र आज के तारीख में न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वो जैसे कि ये भी बताया जाता है कि जो ऋषिगण जो एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर जो बैठे हुए ऋषि के साथ वार्ता भी करते हैं, और ऐसे बताया जाता है कि सत्यलोक में ये ऋषि लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, इनका एक ही मंत्र होता है और वो याहू करके मंत्र है, और उसी मंत्र से एक ऋषि दूसरे ऋषि के साथ वार्ता करते हैं याहू के मंत्र के आधार पर। और उसके बोलचाल जब बढ़ते तो वो अलग बोली होता है, और बोलचाल जब कम होता तो कुछ और बोली होता है। तो एक ही याहू करके जो शब्द है उसी से एक ऋषि दूसरे ऋषि से बात करते हैं, और आज के तारीख में उसी को यंत्र के आधार पर बनाया गया है, और वो है yahoo.com। तो ये yahoo.com है क्या? ये वास्तविक में और कुछ नहीं है, ये पहले के समय पे जो ऋषिगण जो वार्ता करते हैं उसी को लेकर नकल किए हैं। तो जो भी कुछ पहले के समय पर जो भी कुछ था उसी को नकल कर रहे हैं आज के तारीख में, और वो बन गया मोबाइल इत्यादि। तो ये वास्तविकता जो यंत्र के आधार पर जो भी, क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वो जो यंत्र के आधार पर जो भी कुछ वस्तु आज के तारीख में बनी है, ये सारी वस्तुएं समाज में और दुर्घटना उत्पन्न करा रही है, समाज को पूरी तरह दूषित कर रही है। अब साधारण ले वस्तु ले लिया जाए या मोबाइल इत्यादि, जिसके जिस वस्तु से एक ऐसा यंत्र है जिससे एक ऐसी तरंगे निकलती है जो मानव शरीर के लिए बड़ा घातक पूर्वक है, चाहे आप कोई भी यंत्र के कोई भी वस्तु को लीजिए, वो केवल प्रकृति के खिलाफ या प्रकृति को नाश करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मंत्र के आधार पर जो भी वस्तु उत्पन्न होता था ये प्रकृति के अनुकूल रूप में बनता है। जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए, जो कि एक साधारण न्यूक्लियर बम, अब इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। तो वो जो ब्रह्मास्त्र जब एक बार फेंक दिया तो उसे रोकने की भी शक्ति अर्जुन के पास थी, लेकिन एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दब गया तो फूट के ही छोड़ेगा और रुकेगा नहीं बीच में। यह है यंत्र। तो यंत्र में जो भी कुछ वस्तु बनाया हुआ है उसमें कोई नियंत्रण करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मंत्र के आधार पर हर वस्तु को नियंत्रण करने की भी शक्ति रहती है। तो वैसे यहां पर संजय हस्तिनापुर के महल में बैठकर दूरदर्शन कर रहे हैं, और दूरदर्शन कहां का, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, रणभूमि में, जहां पर उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र दोनों एकत्रित खड़े हैं युद्ध की अभिलाषा के लिए। उस कुरुक्षेत्र स्थान के, उस धर्म स्थान के रणभूमि को यहां पर धृतराष्ट्र संजय की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसलिए वो संजय से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो शुरुआत ही प्रश्न से होता है। वैसे देखा जाए भगवत गीता है क्या, भगवत गीता कुछ नहीं है, केवल प्रश्न उत्तरी किताब है। ये प्रश्न उत्तरी किताब कौन सी है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। बाकी आज के तारीख में जो भी कुछ प्रश्न है, जो कि यहां पर हम जो भौतिक जगत में जो किताबों में आप देखोगे प्रश्न उत्तरी, वो अपूर्ण प्रश्न अपूर्ण उत्तर है। हर व्यक्ति प्रश्न उत्तरी में डूबा हुआ है। बस अंतर इतना है कि भगवद गीता के जो प्रश्न उत्तरी है वो चार चीजों से परे है। आहार निद्रा भय मैथुनाम च, ये जो चार चीज है, इस चार चीज से परे वाला प्रश्न है भगवद गीता। इसलिए इस प्रश्न को उत्तम प्रश्न कहा जाता है, जो तीनों गुणों से परे है। लेकिन जो जो हम हर दिन हर एक दूसरे से जो चर्चा में जो लगे हुए हैं, ये जो चर्चा की जो प्रश्न उत्तरी है केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा हुआ है। जैसे श्ल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक जानवर भी, जैसे चिड़िया का उदाहरण देते हुए समझाते, चिड़िया सुबह उठते ही वो च्यू च्यू करना शुरू कर देती है। अब वो च्यू च्यू क्यों करती है, वो ये पूछती है कि आज मेरा भोजन कहाँ है, आज मेरा भोजन कहाँ है। तो एक पक्षी वो भी उठता तो यही प्रश्न करता है। हर व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, एक प्रश्न कर रहा है दूसरा उत्तर दे रहा है। चाहे बच्चा अगर स्कूल में भी जाए या कॉलेज में भी जाए तो वहां पर भी टीचर या प्रोफेसर क्या करते हैं, वो लोगों के प्रश्न के उत्तर देते हैं। वैसे ही हर स्थान में केवल प्रश्न उत्तर ही लगा हुआ है, लेकिन वास्तविक प्रश्न उत्तर ही कैसे होना चाहिए यह हमें अर्जुन से शिक्षा लेना चाहिए। तो यहां पर जो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है वो वास्तविक कोई उत्तम प्रश्न नहीं है, यह भी शारीरिक स्तर वाला प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न उनका था। तो यहां पर कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि भगवद गीता में तो अभी आपने बताया कि उत्तम प्रश्न है, तो यहां पर यह शारीरिक स्तर का प्रश्न उत्तर ही कैसे आया? इसका अर्थ ये, इसका उत्तर यह है कि भगवद गीता की यहां पर शुरुआत हुई नहीं है। ये जो भगवद गीता के जो श्लोक है ये भगवद गीता शुरू होने का भूमिका है। भगवद गीता की शुरुआत होती है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। अब यहां पर भगवद गीता शुरू नहीं हुआ है, भगवद गीता शुरू होने का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड में जहां पर उस भूमिका में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है तो उसकी वार्ता यहां पर चर्चा की गई है। तो धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो प्रश्न कर रहे हैं संजय से। हे संजय, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि में। अब प्रथम आप शब्द देखे रहेंगे धर्म क्षेत्रे, तो यहां पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र करके संबोधित किया गया है। कृपा करके सभी लोग मोबाइल अपना साइलेंट में कर दीजिए। तो यहां पर धर्म भूमि करके पहला संबोधित किया गया है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इस स्थान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो कुरुक्षेत्र के स्थान को धर्मभूमि कहने का मुख्य जो कारण है, धर्मभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण जो वक्ता कर्ता अभिरक्षिता, जो धर्म के वक्ता कर्ता अभिरक्षिता के रूप में हमेशा प्रकट होते हैं, वैसे स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण इस स्थान में, कुरुक्षेत्र के स्थान में उपस्थित होने के कारण इस स्थान को कहा गया है धर्म क्षेत्र। अब इसके और भी कारण है धर्म क्षेत्र करके क्यों संबोधित किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि इस स्थान में कुरु नामक जो राजा था, ये कुरु नामक राजा, ये अपने समय पर इन्होंने इस स्थान पर खूब तपस्या की थी और उन्होंने बड़े यज्ञ हवन किए थे, जिस यज्ञ हवन का उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो कोई इस स्थान पर अपना देह छोड़ेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इनकी तपस्या सफल नहीं हो रही थी, ये यज्ञ हवन कुंड कर रहे थे उसमें भगवान प्रकट नहीं हो रहा था। तो भगवान को बड़े तपस्या के आधार पर जब भगवान को, जब उनकी तपस्या से जब प्रकट हुए तो भगवान प्रकट होकर कहने लगे क्या इच्छा है तुम मांगो। तो उन्होंने कहा जो कोई यहां पर अपने देह को छोड़ेगा उसे स्वर्ग मिले। तो नारायण ने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए ये यज्ञ कुंड से पूरा नहीं होगा, तुम्हें अपना एक पैर काटकर हवन में डालना होगा। तो कुरु राजा ने अपने एक पैर काटकर हवन में अर्पण कर दिया, फिर भी भगवान ने कहा नहीं ये भी पूरा नहीं, दूसरा भी पैर काटो। दूसरा भी पैर काट के हवन में डाल दिया तो बोला ये भी नहीं, एक हाथ भी काट के डाल दो। तो कुरु राजा ने अपना एक दायना हाथ भी काट दिया तो बोला नहीं और एक हाथ काट दो। दोनों हाथ दोनों पैर उन्होंने काट के हवन में डाल दिए, तब भगवान ने कहा हाँ अब ठीक है। और भगवान फिर कहने लगे, मैं वास्तविक तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें लोगों से वास्तविक प्रेम कितना है। अब तुम तपस्या से सफल हो गए हो और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूं, जो कोई यहां मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। और इसीलिए इस स्थान में 64 करोड़ लोगों की हत्या हो गई, लेकिन जितने लोग भी मरे उन सबको स्वर्ग मिला। तो ये जो लोग कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने देहों को छोड़े तो वास्तविक भगवान उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, मुक्ति प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आकर कहने लगा कि स्वामी जी, मुझे एक ज्योतिष ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा था, और वो भी किसके साथ, कृष्ण के विपक्ष युद्ध कर रहा था पिछले जन्म में। तो प्रभुपाद कहने लगे वो झूठ बोल रहा है। बोले कैसे? बोले तुम अगर कृष्ण के विपक्ष होकर, अगर उनसे उनके विरोध में रहकर तुम युद्ध करते होते तो तुम यहां नहीं होते, तुम्हें भी मुक्ति मिल गया होता। तो जो कोई मरते वक्त कृष्ण का दर्शन किया उसे मुक्ति प्राप्त हुआ। तो यह भी एक कारण है जिस कारण से इस स्थान को कहा गया धर्म क्षेत्र। अभी इसके और भी कारण हैं जो इसको धर्म क्षेत्र इसलिए संबोधित किया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस स्थान में देवगण, यहां पर देवतागण इस स्थान पे आकर जो भी कुछ पूजा पाठ इत्यादि करना है तो वो कुरुक्षेत्र स्थान को चुनते हैं जहां पर उन लोगों का पूजा का उत्सव बनाया जाता है। तो देव लोगों का पूजा स्थान स्थल होने के कारण इस स्थान को भी कहते हैं धर्म क्षेत्र। तो यह भी कारण है कि धर्म क्षेत्र इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जब परशुराम पूरे विश्व भर में जब 21 बार जब उन्होंने क्षत्रियों का जब वध किया, संहार किया, और ये क्षत्रियों के कपट राज्य से मोक्ष दिलाया इस पृथ्वी को, तब उनके हृदय में थोड़ा प्रायश्चित करने की इच्छा जागी, उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगा और वो विचार करने लगे मैंने कई लोगों की हत्या कर दी, 21 बार क्षत्रियों का वध किया। तो उन्होंने अपने हृदय में इस ग्लानि को रखते हुए वो प्रायश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र नाम के स्थल को चुना जहां पर उन्होंने जाकर तपस्या किया। इसलिए इस स्थान में परशुराम उपासक बहुत लोग दिखेंगे। इसलिए इस स्थान पर आपको जाएंगे तो आपको परशुराम कुंड भी दिखेगा। तो यह भी एक कारण है जिस कारण से इस स्थान को कहते हैं धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसलिए क्योंकि कुरु राजा ने वहां पर अपना तन मन पूरा लगा दिया था उस भूमि को पवित्र करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र आगे? तो कहते समवेदा एकत्रित हुए। कौन कौन? पूरे कुरु वंश के लोग हैं वो सभी लोग उस स्थान पर एकत्रित हुए। किसके लिए? जुजुत्सवा यानी कि युद्ध की अभिलाषा के लिए। तो समवेदा जुजुत्सवा उस स्थान में युद्ध करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। अब कौन कौन एकत्रित हुए? तो पूरे कुरु वंश के लोग आए थे, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय के अंदर की बोली के द्वारा हम जान सकते हैं कि धृतराष्ट्र की मन की भावना क्या थी। अब यहां पर धृतराष्ट्र क्या कह रहे? माम का पांडवश्चैव मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। अब धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र कौन से वंश के हैं? कुरु वंश के हैं। ये कुरु वंश के होने के बाद भी यहां पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र को और पांडु के पुत्र को अलग कर रहे हैं और मेरा तुम्हारा कर रहे हैं। अब मेरा तेरा कौन करता है? जो शारीरिक जो अज्ञानता के स्तर में वही व्यक्ति करता है। जो अपने आप को ये देह मानता है वही व्यक्ति मेरा तेरा करता है। और ये जो बोली से यहां पर धृतराष्ट्र की इस बोली से संजय समझ गए कि इनके मनोभावना क्या है। तो किसी को अगर जानना है तो हम उसकी बोली के द्वारा उसके मनोभावनाओं को जान सकते हैं। अगर किसी को अगर टटोलना है कि यह व्यक्ति कैसा है तो उसकी बोली के आधार पर वो पैरामीटर है उसका बोली, उसके उसके मन की भावनाओं को नापने का। तो बड़े बड़े जो संतगण होते हैं वो व्यक्ति के बोली के आधार पर उनकी मनोभावनाओं को टटोल लेते हैं। यहां पर धृतराष्ट्र के मन की भावनाओं को जानने के लिए यहां पर संजय ने जब सुना तब वो समझ गए कि धृतराष्ट्र की क्या स्थिति है। तो ऐसे बताया गया कि मूर्ख व्यक्ति को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो बोलता नहीं। और विद्वान व्यक्ति तब समझ में आएगा जब उसकी बोली शुरू होगी। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब जैसे उन्होंने अपने जब वो दिगंबर होकर जब जा रहे थे परीक्षित महाराज जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान पर उनके पास, तो उनको वस्त्रहीन देखकर सारे जितने भी छोटे बालक महिला इत्यादि सभी लोग उनको पागल समझकर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे और कोई हंसी उड़ाते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे और लोग सोच रहे थे कि कोई पागल है। अब सुखदेव गोस्वामी अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो कि श्रीमद् भागवतम के जो सबसे बड़े वक्ताकार के रूप में जाने जाते हैं और वैसे वक्ता के मुख से सुनने के लिए बड़े बड़े संत शिरोमणि उनके समक्ष सामने बैठे। जब सुखदेव गोस्वामी ने जब बोली शुरू किया तब समझ में आया कि हाँ ये कोई साधारण नहीं है। तो बोल चाल से व्यक्ति का पहचान किया जाता है। जैसे कि बताया जाता है एक पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि एक बार कौवा उड़ता उड़ता स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग में गया तो स्वर्ग के जितने भी वासी थे वो सब लोग देखने लग गए, अरे ये कौन सा विचित्र पक्षी है। तो स्वर्ग के देवतागण सोचने लग गए कोई बड़ा कोई ऋषि ने यहाँ पर अवतार लेकर हमें कुछ दिव्य ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो कुछ लोगों के मन में तरह तरह की उच्च प्रकार की भावना थी और लोग नाना प्रकार से तरह तरह से उनके स्वागत के लिए आरती प्लेट चामर मोर पंख इत्यादि लाकर उनकी पूजा करने लगे और खूब पूजा हुआ। और जब कहा दो बोली बोल दो तो तब कौवा ने अपना बोली शुरू किया काओ काओ काओ। तब समझ गए देवतागण ये कोई पृथ्वी से आया हुआ पक्षी है, पत्थर मार के भगा दिया वहां से, भाग यहां से। तो जब तक कौवा ने बोली शुरू नहीं किया तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौवा कहां से आया। जैसे ही कौवा ने अपना ध्वनि शुरू किया तब समझ गए कि इसकी ये कहां से आया हो। वैसे ही यहां पर संजय धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा वो समझ गए। तो क्या समझ गए? वो समझ गए कि धृतराष्ट्र अभी भी मेरा तेरा कर रहा है। धृतराष्ट्र अभी भी शारीरिक स्तर में है। तो जब कोई शरीर के स्तर में रहता है तो उनकी बड़ी आसक्ति रहती है अपने देह से संबंधित वस्तुओं के प्रति। और यहां पर धृतराष्ट्र इसी भावनाओं से डूबे हुए थे, इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर धृतराष्ट्र कह रहे मामका, जो कि इसके बाद सिख वाले शब्द में कहते मामका, मेरा। तो जब कोई शरीर के स्तर पर रहता है उसके लिए दो ही प्रिय वस्तु रहता है, एक तो मैं, दूसरा है मेरा। मैं और मेरा के प्रति ही उनकी आसक्ति रहती है। अब ये मैं और मेरा में भी सबसे ज्यादा स्नेह उसको किसके प्रति रहता है, मैं। तो वास्तविकता इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है, उसको दूसरे से प्रेम नहीं है, नहीं ना कि उनको अपने परिवार के प्रति प्रेम है। वो क्योंकि अपने आप से प्रेम करता है इसलिए वही प्रेम वो परिवार के प्रति कर रहा है। किस लिए? क्योंकि बाकी जितने परिवार के सदस्य हैं वो उसके देह से संबंधित है। तो जो शरीर है और शरीर का बाय प्रोडक्ट, इनके प्रति ही उनकी आसक्ति बनी रहती है। अभी जैसे कि आत्मा तो वही आत्मा है, भगवान का अंश, तो वही आत्मा सबके देह में घुसा हुआ है, देही के रूप में है। तो एक पिता अपने बच्चे से ही ज्यादा प्रेम करता है, अपने पड़ोस के बच्चे से प्रेम नहीं रहता इतना जितना अपने बच्चे से प्रेम रहता है। पड़ोसी के बच्चे, अपने बच्चे के लिए जो जो करता है पड़ोस के बच्चे के लिए नहीं करता, हालांकि आत्मा ही है वो भी, ये भी एक आत्मा, लेकिन क्यों इसके प्रति उनका, क्योंकि ये देह से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप से इतना प्रेम करता है, वही प्रेम उसका अन्य लोक से वितरण होता है। जैसे बताया जाता है कि एक बार की बात थी कि बीरबल अकबर को समझा रहे थे, बीरबल समझा रहे थे कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है। तो अकबर ने कहा नहीं नहीं, इस संसार में मां अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है उतना प्रेम कोई नहीं करता, और मां का प्रेम निस्वार्थ है। जब उन्होंने ये जब तर्क रखा तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो बीरबल ने उसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे दिन बीरबल ने एक बंदरी और बंदरी के बच्चे को एक बड़े ड्रम के अंदर डाल दिया। अब उसी के अंदर डाल दिए, अब डालकर वो अकबर को बुलाए, बोले देखो मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं, तुम्हारे प्रश्न के सारे उत्तर इसी में छुपे हुए हैं। तो ये कहने लगे, अकबर ने कहा कि ठीक है दिखाओ। तो उसी के अंदर, उसी ड्रम के अंदर पानी भरना शुरू किया। अब जब पानी भरना शुरू किया तो धीरे धीरे पानी भरता गया। अब बंदर जो है वो इतना बड़ा ड्रम है, वो कहां छलांग लगाएगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। बहुत प्रयास किया, बाहर तो नहीं आ पा रहा था, पानी भरता जा रहा है। अब हुआ यूं कि बंदरी ने अपने बच्चे को गोद पे ले लिया। तो यहां पर अकबर कहने लगा देखो बंदरी को अपने बच्चे से कितना प्रेम है। तो बीरबल ने कहा देखो आगे आगे होता है क्या, पानी और भरता गया, और जब और भरता गया तो उन्होंने अपने बच्चे को कंधे में ले लिया। तो अकबर बड़ा ताली मार रहा था, वाह इसे कहते वास्तविक प्रेम। और जब पानी एकदम भरता गया, जब उस बंदरी के नासिका तक पानी पहुंच गया तो बंदरी छटपटाने लगा, उन्होंने उसी बच्चे को लिया, नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब ये दृश्य देखकर राजा भी हड़बड़ा गया। तो राजा भी कहा हाँ बीरबल तू वाकई सही कहता है, ये संसार में हर व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है। अपने से जितना प्रेम करता है व्यक्ति उतना किसी और से करता ही नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। इसीलिए आप देखिए, एक छोटा सा भी अगर उदाहरण भी देखेंगे कि कुछ ही एकाएक घर में कुछ अगर संकेत या कुछ होने वाला है तो तुरंत सबसे पहला व्यक्ति बाहर निकलता है, फिर देखते कि और परिवार वाले आए क्या नहीं। भूकंप वगैरह आ रहा है तो सबसे पहला व्यक्ति बाहर आता है, फिर परिवार को बुलाते जल्दी आओ, पहला तो अपना रास्ता क्लियर करते हैं। हर व्यक्ति का यही है, हर व्यक्ति अपने आप से जितना प्रेम करते उतना किसी और से। इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरे को भी बलिदान देने को तैयार है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। अब यहां पर देखिए एक उदाहरण धृतराष्ट्र का। अब धृतराष्ट्र जो थे उनका स्वार्थ क्या था, बड़ा राज्य, वो पूरे विश्व का सम्राट राजा बनना चाहते थे अकेला। और वो सम्राट राजा की पदवी में बैठने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। जाओ लड़ो मरो कुछ भी हो, लेकिन मेरे राज्य का दो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, अकेला राजा मैं रहना चाहिए। अब युद्ध में क्या है, युद्ध में व्यक्ति मारा भी जा सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र इतना स्वार्थी था कि अपने पुत्र को बलिदान देकर वो अपने राज्य को पकड़ के रखना चाहते थे। इसलिए बताया जाता है धृतराष्ट्र, जो दृढ़ता पूर्वक राष्ट्र को राज्य को पकड़ के रखा था वो था धृतराष्ट्र। और वैसे ही आज के तारीख में जो दृढ़ता पूर्वक अपने शारीरिक चेतना को जो पकड़ के रखता है कि मैं ये शरीर हूं ऐसे सोचकर बैठता है, वो भी धृतराष्ट्र का दूसरा नंबर है, वो भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है। वैसे ही यहां पर धृतराष्ट्र के मनोभावनाओं को देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को बलिदान दे रहे हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए बताया जाता है कि हर व्यक्ति जो भी जीव आत्मा है वो वास्तविक स्वार्थी है, लेकिन समस्या यह है कि उसे यह पता नहीं कि स्वार्थ किस में छुपा हुआ है। वास्तविक हमारा स्वार्थ है भगवान की सेवा में, लेकिन लोग इस स्वार्थ को भूलकर अपने स्वार्थ अलग ढंग से सोचते हुए वो समस्या में पड़ जाते हैं। और इसीलिए सभी लोग अपने आप को प्रथम व्यक्ति प्रेम करता है। जैसे कि जब गजेंद्र जब सरोवर के लिए जब स्नान करने के लिए गए, तब उस समय मगरमच्छ ने उनके पैरों को कस के पकड़ लिया, तब उसी समय उनके जितने भी परिवार थे वो सभी लोग दूर खड़े होके नजारा देख रहे, हो गया आप क्या करें। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आकर उस मगरमच्छ से उसको छुटकारा दे। गजेंद्र को साक्षात्कार हो गया, देखो मैं जिस परिवार के लिए जी रहा हूं वो परिवार ही पूरा स्वार्थी। तो पहले तो उन्होंने अपना बल खूब लगाया, लेकिन अपना बल खूब लगाया कुछ हुआ नहीं, तो परिवार के प्रति देखा कि परिवार वाले मुझे मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं किया। तो इसलिए मी एंड माइन, मैं और मेरा। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते कि हर व्यक्ति अपना अपना इंडिविजुअल एरोप्लेन उड़ा रहा है, हर व्यक्ति का अलग अलग फ्लाइट है, सभी लोग अपने अपने एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। अब एक एरोप्लेन जब क्रैश होने वाला है तो दूसरा एरोप्लेन कुछ कर सकता है? अब एक एरोप्लेन क्रैश हो रहा है तो दूसरा एरोप्लेन देख के थोड़ा आंसू गिराएगा, ओ ये जा रहा है अब इसे कौन रोकेगा, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। वैसे ही यहां पर एक व्यक्ति जब अपने देह को छोड़ने का जब तैयारी करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको कुछ नहीं कर सकता। हम सभी लोग अपने फ्लाइट में बैठे हैं और हम सब कौन है, पायलट है, और ये बॉडी, ये जो शरीर जो है वो क्या है, प्लेन है, एक वाहन है जिसके अंदर हम सब पायलट बनकर बैठे हैं। अब एक प्लेन अगर क्रैश हो रहा है तो दूसरा पायलट देख के रोएगा और कुछ नहीं करेगा। और यही यहां पर वास्तविक सच्चाई यही है कि कैसे जो धृतराष्ट्र के जीते जी उनके 100 पुत्र का वध किया गया लेकिन धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं पाए। ये धृतराष्ट्र की परिस्थिति थी। इसलिए बताया गया है एक ही वस्तु हमारे साथ रहती है और वो है भगवान का सेवा या भगवान के प्रति जो हमने कार्य किया है वो हो। जैसे कि उपनिषद में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था और ये राजा जो था इसकी 4 पत्नी थी। तो ये जो राजा अपनी 3 पत्नी से खूब प्रेम करता था मगर चौथी वाली पत्नी को देखता तक नहीं था, जबकि इसके खाने के, सोने के, पहनने के सभी तरह की व्यवस्था ये चौथी वाली पत्नी करके देती थी। और ये राजा इतना अपने आप में गर्वित हो गया था, चौथी वाली के प्रति उनका ध्यान ही नहीं था। हुआ यूं कि एक बार उस राजा को बहुत बुरी तरह से जानलेवा रोग पकड़ लिया और वो रोग उस राजा को अब मृत्यु के घाट पहुंचाने ही वाला था। चिकित्सक ने भी कह दिया बचना नामुमकिन है, तुम्हारी मृत्यु ध्रुव है। तो सुनके बड़ा मायूस हो गया। तो उन्होंने सोचा चलो अब मैं देह तो छोड़ रहा हूं तो चलो अंतिम समय पर अपने पत्नियों से पूछ लूं। तो उन्होंने अपने प्रथम पत्नी को बुलाया और प्रथम पत्नी को बुलाकर वो पूछने लगा अब मैं जा रहा हूं क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो इन्होंने कहा देखो जैसे तुम जाओगे ना तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। तो सुनकर बड़ा चोट लगा दिल पर, बोले क्या करे, पहली पत्नी ने भी ऐसे कह दिया तो सोचा चलो दूसरी पत्नी से पूछता हूं। तो दूसरी पत्नी को बुलाया और कहने लगे अब मैं जा रहा हूं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो दूसरी पत्नी ने कहा देखो जी जैसे तुम जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अब यह सुनते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और दूसरी पत्नी पे भरोसा वो भी ऐसे कह दिया। तो सोचे चलो तीसरी पत्नी तो होगी। तो तीसरी पत्नी के प्रति अंतिम आशा थी तो उन्होंने तीसरी पत्नी को बुलाकर पूछा कि अब मैं जा रहा हूं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो तीसरी पत्नी कहने लगी देखो जी तुम जाने के बाद ठीक है मैं शमशान भूमि तक आऊंगी, बाकी तुम्हारा रास्ता मैं मेरा रास्ता। अब तीनों का उत्तर सुन के इतने मायूस हो गए, बच्चे कुच्चे जीने की जो इच्छा थी वो भी खत्म हो गई। कहीं से तो उन्हें चौथी वाली पत्नी की आवाज आई और कहने लगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही ये जो राजा अपने आप में इतना घृणा करने लगा, उन्हें इतनी ग्लानि होने लगी हो मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है 3 पत्नी के पीछे, चौथी वाली पत्नी को कभी मुड़ के तक नहीं देखा मगर ये कह रही है कि मेरे साथ चले मृत्यु के बाद। वाकई कोई विश्वसनीय है तो ये चौथी वाली है लेकिन मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। वास्तविक इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वो राजा कोई और नहीं, हम सब है और हम सबके पास वो 4 पत्नी है। वो 4 पत्नी क्या है? वो 4 पत्नी कुछ और नहीं, जो प्रथम पत्नी जिन्होंने ये कहा था कि जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। तो जैसे ही व्यक्ति का मृत्यु आता है उसी क्षण जो मृत्यु के समय पर उस प्रथम जो पत्नी हमारा वो है देह, इस देह के साथ हमारा संबंध उसी क्षण कट जाता है। तो जैसे मृत्यु आती है देह का और आत्मा का संबंध खत्म। तो प्रथम पत्नी कौन सी है? हमारा ये शरीर, ये देह है। और दूसरी पत्नी, उन्होंने क्या कहा था? मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अब ये दूसरी शादी करने वाली जो पत्नी कौन सी है? ये हमारे धन दौलत के साथ माना गया है। हमने जो भी कुछ जीवन भर तक जितने भी कमाई किए हैं, ये सारी लक्ष्मी के पति आज हम हैं। लेकिन जैसे ही ये देह छूटेगा, इसी लक्ष्मी का पति कोई और होगा, तो ये लक्ष्मी किसी और की पत्नी बन जाएगी। जिस लक्ष्मी के पति आज हम हैं, वही लक्ष्मी का पति कोई और बन जाएगा, यानी कि दूसरी शादी कर लेगी। अब तीसरे पत्नी ने क्या कहा था? शमशान भूमि तक चलूंगी। अब ये शमशान भूमि तक चलना मतलब क्या? ये हमारे स्वजनों के साथ तुलना किया गया है। मृत्यु के बाद शमशान भूमि तक हमें कौन सहारा देता है? स्वजन लोग। स्वजन लोग शमशान भूमि तक लेकर जाते हैं, और उसके बाद वो उनका रास्ता, हमारा रास्ता। खैर, आज के तारीख में तो वो भी स्वजनों के पास उतना भी टाइम नहीं है कि शमशान भूमि तक भी आए। आजकल तो बहुत दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि जैसे ही कोई अपना देह छोड़ता है तो तुरंत एम्बुलेंस गाड़ी आती है, उसको डालती है और सीधा इलेक्ट्रिक भट्टी में डाल देते हैं और राख बनकर आ जाता है 2 मिनट में। तो स्वजन लोगों का भी टाइम बच जाता है। तो वैसे आज के तारीख में स्थिति है। अब ये जो तीन पत्नी के हमारा जो देह, हमारे धन दौलत, हमारे स्वजन, ये तीनों जन के प्रति हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते केवल ये तीन चीज के लिए। हाँ, शरीर को चमकाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक वही काम रहता है। ये अपने शरीर को कैसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ताजगी में रखे। अब ये देह जिसके लिए व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन वही देह क्या हो जाता है? छोड़ के चला जाता है। अब इतना ही नहीं, साथ में जिस लक्ष्मी के लिए हम इतना दिन रात भागते हैं, वही जो लक्ष्मी आज हमारी है तो कल ये किसी और की बन जाती है। हालांकि लिखा है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कार्ड ले लेते हैं और इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर लिखा है जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है वो हम भरण पोषण करेंगे। तो योगक्षेमं भले ही लिखा है, लेकिन मरने के बाद संपत्ति किसके पास? उसके पास तो जो किसी और को मिलता है। मरने के बाद वो धन दौलत का जो मालिक आज है, कल वही मालिक कोई और बनेगा। और जो तीसरी पत्नी, वो कौन है जिन्होंने कहा था शमशान भूमि तक, और जिस स्वजन के लिए हम दिन रात मेहनत करते, स्वजनों को मदद करने के लिए, लेकिन अंततः गतवा स्वजन भी हमें मृत्यु के समय पर बचा नहीं सकता, वो केवल ज्यादा से ज्यादा कंधा दे सकता। तो कौन सी जो पत्नी थी जो व्यक्ति को कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? तो वो कौन है? कोई और नहीं, वो है हमारा ईश्वर भजन या कृष्ण भक्ति या कृष्ण के प्रति जो हमारी सेवा की गई है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, यही जो धर्म के जो कार्य है वही वास्तविक हमारी संपत्ति है। वही एक ऐसी वस्तु है जो हमें मृत्यु के समय पर हमारी रक्षा करेगी, बाकी कोई वस्तु नहीं। तो वास्तविक व्यक्ति का स्वार्थ किसमें होना चाहिए? व्यक्ति का स्वार्थ होना चाहिए अपने धार्मिक कार्य के प्रति, और इसी में स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन जीव अपने स्वार्थ को भूलकर धर धर भटक रहे हैं। जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र के तरह धृतराष्ट्र इसी प्रकार परेशान होकर अब ये प्रश्न पूछ रहे कि म कुरुवत संजय। तो आगे वर्णन है, अंतिम जो लाइन है उसमें कहा गया कि म कुरुवत, हे संजय उन लोग वहां पर एकत्रित होकर कर क्या रहे। अब यहां पर धृतराष्ट्र के प्रश्न के पीछे वास्तविक कोई अर्थ नहीं बनता है। अब यह प्रश्न कैसा है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति भूखा प्यासा व्यक्ति वो बड़ा परेशान है और भूख प्यास से इतना तरस्त है और उसके सामने 56 भोग आ गया और किसी ने पूछा क्या किया, अब करेगा क्या। ये भी कोई प्रश्न है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति वो गया सीधे शराब अड्डे में और मंच पर बैठ गया, उस मंच के ऊपर शराब की बोतल भी आ गई और फिर किसी ने पूछा क्या किया, अब क्या करेगा, पिएगा। वैसे ही यहां पर जो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न जो दिखा देख रहे हैं, ये वास्तविक प्रश्न के योग्य है ही नहीं। ये लोग रणभूमि में एकत्रित हुए किस लिए, युद्ध की अभिलाषा के लिए। और युद्ध की अभिलाषा में पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों जन एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए और इतने में पूछ रहे कि क्या किया, अब क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे। श्ल प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र का इस प्रकार के प्रश्न पूछने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भय छुपा था। किस प्रकार का भय था, उन्हें यह भय था कि मेरे पुत्र कहीं पांडवों के पुत्र के साथ कहीं समझौता ना कर ले। धृतराष्ट्र को भली भांति पता था कि मेरा पुत्र अधर्म है, वो जानता था मेरा पुत्र जो है कूटनीति पापी तरह तरह के अधर्म करने में बड़ा निपुण है, वो जानता था। लेकिन उनको यह भी डर था कि 5 पांडव जो थे बचपन से ही पुण्य आत्मा है, तो उस पुण्य आत्मा के संगति में आकर मेरा पुत्र कहीं समझौता कर दिया तो धृतराष्ट्र को यह डर था कि वो पुण्य आत्मा के संगति में कहीं बिगड़ ना जाए, जो कि आज के तारीख में लोगों को बड़ा डर रहता है, जिसको हरे कृष्ण आंदोलन के विषय में जानकारी ठीक से नहीं रहता है तो लोग कभी कभी डर जाते हैं। अगर पत्नी ज्यादा आने लगेगी तो पति रोक टोक लगाएगा, देखो तुम आजकल ज्यादा जाने लगी हो हरे कृष्ण में, या पति ज्यादा जाने लगेंगे तो पत्नी रोक, क्या बात है, क्या छोड़कर जाने का विचार है क्या मुझे। और अगर बच्चे ज्यादा जाने लगते तो माता पिता उसे रोक टोक लगाते, देखो मंदिर जाना है तो दूर से ही प्रणाम करना है, और वो खास करके वो लाल कपड़े से लाल बत्ती से सावधान, वो डेंजर है, नहीं तो तुम्हारा भी हुलिया ऐसा ना हो जाए। तो लोग डर जाते हैं और लोगों को लगता है कि माता पिता को ऐसे लगता है कि कहीं मेरा बच्चा कहीं ज्यादा धार्मिक ना बन जाए, डर जाते, घबरा जाते। हरे कृष्णा आंदोलन में आकर कहीं ज्यादा भक्ति वगैरह शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम समस्या खड़ा हो जाएगा। और यही यहां पर इसी प्रकार का धृतराष्ट्र के मन में ये डर बैठ गया कि मेरा पुत्र वो पांडवों के पुण्य आत्माओं के संगति में आ गया तो कहीं वो ज्यादा धार्मिक ना बन जाए, और इसी घबराहट से वो पूछ रहे कि मेरा पुत्र अभी भी अधर्मिक है क्या, नहीं अधर्म के पक्ष में खड़ा है क्या, नहीं। और वैसे प्रश्न से वो प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किम कुर्वत संजय, कर क्या रहे। तो साथ में ये इस प्रकार भी इसे बताया जाता है कि धृतराष्ट्र को इस प्रकार का भी डर था क्योंकि उन लोग खड़े कहां पर थे, धर्म क्षेत्र में जो कि पुण्य भूमि है। तो तीर्थ स्थान में व्यक्ति अगर खड़ा रहता है तो तीर्थ स्थान का असर उसके मन में गिरता है, तो उसके मन में उस तीर्थ स्थान का प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जो लोग उदाहरण के तौर पे कभी कभी लोग वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाते तो कई माला करते हैं, प्रभु जी आज मैंने 108 माला किया, कई कई लोगों से सुनते हैं। और जब वो वृंदावन यात्रा खत्म होकर बॉम्बे आते हैं तो पूछते हैं जब कैसे माला कर, नहीं प्रभु जी अभी टाइम एक माला भी नहीं होता है, कहां 108 और कहां एक माला। क्यों? क्योंकि इस स्थान में ये जो भूमि है, जिस स्थान में व्यक्ति खड़े रहते ही अनेक अनेक प्रकार के उनके मन के अंदर उस तरंगे का प्रभाव पड़ता है, जो तरंगे उसे केवल उद्विग्न करता है और भगवान की भक्ति से दूर कर देता है। लेकिन जो पुण्य जो तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान में बड़े बड़े भक्तगण जाकर उस स्थान को पुण्य के रूप में बदल दिया, और इस कारण से उनके नाम जप शक्ति के कारण से, उनके नाम के प्रभाव से, उनके नाम के शब्द में ऐसी तरंगे निकली है जो कि उस स्थान को अभी भी सुरक्षित रखा है। इसलिए वहां पर कोई जाता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में भक्ति उमड़ती है, वैसे पवित्र स्थान में। इसलिए तीर्थ स्थान जाना महत्व ज्यादा है या जरूरी है। जहां पर तीर्थ स्थान में व्यक्ति के हृदय में भक्ति करने की जो ऊर्जा है और तीव्रता होती है, तीव्र गति से बढ़ती है। और धृतराष्ट्र को यह डर था, तो धृतराष्ट्र को दो प्रकार से डर था, एक था पुण्य आत्मा की संगति, दूसरा है पुण्य भूमि का प्रभाव। अब ये दो के प्रभाव से मेरा अधर्म पुत्र कहीं धार्मिक ना बन जाए, इस डर से उन्होंने पूछा कि मैं कुरुवत वो लोग कर क्या रहे। तो इसका इस प्रकार यहां पर प्रश्न है, फिर इसका उत्तर इसके बाद वाले श्लोक में संजय देते हैं, जो आप लोग सभी लोग इसका पढ़ाई कर लीजिए घर पर जाकर। हरे कृष्ण। और बाकी के जो इसके बाद वाला जो श्लोक है हमारा, दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक से करेंगे। और आप लोग ये पढ़ लीजिए, अगर किसी को कुछ प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पढ़ने के बाद आप लोग प्रश्न ला सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आने वाले शुक्रवार को। तो आज के क्लास में कुछ प्रश्न है किसी का? है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब सभी लोगों के लिए प्रसाद होगा तो कृपा करके प्रसाद ग्रहण करके जाइए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।